पहला सवाल जो पूछा गया है, आजकल की जो नई नस्ल है, बच्चे बच्चियां, बहुत ज़्यादा उनसे रिलेटेड सवाल है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सवाल। और वो सवाल ये है कि क्या जिस्म पर टैटूज बनवाए जा सकते हैं? देखिए, एक बात याद रखें हमेशा, इस कानून को आप अपने जहन में बिठा लें तो बहुत सारी मुश्किलात आपके लिए खुद ब खुद हल हो सकती हैं। नॉर्मली ये सवाल जो पूछा जाता है, दो इसके अंदर जिहात हो सकती हैं, दो एतवारात हो सकते हैं, दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिसको हम इस सवाल में ढूंढ सकते हैं और उन एंगल से इसके ऊपर बात की जा सकती है। एक पूछने की वजह मुमकिन है बाज़ औक़ात ये होती हो कि ये मतलब फ़र्ज़ करें बाजू पर टैटू बनवाया हुआ कोई, ठीक है, या जिस्म पे किसी जगह पर टैटू बनवाया हुआ है, तो आया वुजू और गुसल के हिसाब से कोई मुश्किल खड़ी होती है या नहीं खड़ी होती इस टैटू की वजह से? अब जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं मालूम, वरना मैं देख कर आया हूँ, पहले गूगल सर्च करता कि ढूंढता ये टैटूज बनते कैसे हैं और फिर कोई रोशनी डालता, तो मैं तो इन चक्करों में नहीं पड़ता हूँ। कानून बताना मेरा काम है, मसला बताना मेरा काम है, बाकी तय करना आपका काम है। फकीर का काम या उलमा का काम ये बताना है कि शराब हराम है। अब इस गिलास में शराब पड़ी हुई है, इसमें पेप्सी पड़ी हुई है, इसमें सिरका पड़ा हुआ है, इसमें क्या बला पड़ी हुई है, ये चख के बताना मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं पहले चखूँ और फिर बताऊँ कि ये क्या बला है और इसको पीना आपके लिए जायज़ है या जायज़ नहीं। मेरा काम मसला बताना है, वमा अलैना इल्लल बलाग, मेरा काम है मसला बयान करना। और ये काम रसूल का भी यही था, रसूल की भी जिम्मेदारी ये नहीं थी कि अगर किसी के सामने ग्लास पड़ा हुआ है तो वो पहले पिए, खुद तय करें कि ये क्या है और फिर उसको बताएं कि भाई तुम इसको पी सकते हो। मेरा काम है मसला बताना, शराब है तो पीना हराम है और शराब के अलावा कोई चीज़ है, पेप्सी है, सिरका है, पानी है, अला है, बला है, तो वो जायज़ है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। यही चीज़ यहाँ पे भी है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह से ये बनाया जाता है, क्या बला बनती है और कैसे बनती है, ये इसकी रिसर्च करना ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरा काम है आपको एक मसला बयान करना, फॉर्मूला बता देना, बाकी तय करना आपका काम है। शरायते वुजू में एक शर्त है कि आपके आज़ाए वुजू पर रुकावट ना हो। ये जाएगा उस चैप्टर के अंदर, उस शर्त के अंदर जाएगा, शरायते वुजू के बाब में जो शर्त है कि रुकावट ना हो, ये उसके अंदर जाएगा। देखना पड़ेगा कि ये रुकावट बन रहा है या नहीं बन रहा। वहां से जो मसला दिया हुआ है, मैं कोई ये एक किस्म के समझे आपको समझा रहा हूं कि मसले निकलते कैसे हैं। मैं कोई हुनरमंदी नहीं दिखा रहा हूं, कोई अपना कोई करिश्मा नहीं दिखा रहा हूं, सिर्फ तय ये करना होता है कि कहां से मसला बना है, ये इसकी बेस क्या बन रही है। तो उसकी बेस में जाके आप देख लें, जो मसला वो बेस में मौजूद है वही मसला इसके ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अब ये रुकावट के बाब से आती है बहस, क्योंकि ये कोई नजीस चीज़ तो नहीं है ना कि हम कहें जी नजासत तो तहारत की बहस है। ये बहस है ये कि आया ये जो टैटू बना हुआ है ये रुकावट वुजू के लिए बन सकता है या गुसल के लिए, या रुकावट नहीं बनता है। अगर तो ये खाल के अंदर, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता कैसे बनता है, लेकिन हमारी किताबों में कुछ मसाइल आते हैं। एक उसमें मसला आता है खालकूबी का, कि अरबों में आपने अगर ये आपने देखी है वो इमाम अली, देखी है आप लोगों ने ईरान की जो बनी हुई सीरियल है, देखी है नहीं देखी? ताज्जुब की बात है, नहीं देखी तो देखिएगा। उसमें जो उन्होंने कुतान बनाई हुई है, आपने देखा होगा कि उसके मतलब आंखों पर या यहाँ पर इन हिस्सों पर ब्लू ब्लू या ग्रीनिश ग्रीनिश से स्पॉट्स बने हुए होते हैं, उसको खालकूबी बोलते हैं। वो नॉर्मली होता ही है कि मसलन पिन के जरिए, सुई के जरिए खाल के अंदर, इनको दर्द हो रही है, खाल के अंदर जो है वो कोई कलर डाला जाता है कि जिसकी वजह से वो ऐसे फील होता है जैसे मसलन कोई, अगर अगर मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम, अगर ऐसा ही होता है कुछ कि खाल के अंदर कुछ इंजेक्ट किया जाता है जिसकी वजह से ये शक्लें बनाई जाती हैं, तो जो खाल के अंदर है वो कभी रुकावट नहीं बनता, क्योंकि हमें खाल के अंदर पानी नहीं पहुंचाना, हमें ऊपर की खाल को धोना है। और फर्ज यह है कि ये खाल के नीचे कुछ है, अगर कुछ है भी तो। खाल के ऊपर तो सिर्फ उसके एक शेड नजर आ रहा है ना, बाकी जो कुछ भी है वो खाल के अंदर है। तो खाल के अंदर तो पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं है वुजू में और गुसल में कि खाल को इंजेक्ट कर कर के अंदर पानी पहुंचा, ऐसा तो कुछ नहीं है। जाहिरी खाल धोनी है आपको, दुरुस्त, लिहाजा कोई रुकावट क्योंकि नहीं है, अगरचे टैटू मौजूद है लेकिन रुकावट नहीं है, लिहाजा इससे ना वुजू में कोई खलल पैदा होगा और ना ही गुसल में कोई खलल पैदा होगा, अगर यही टैटू की माहियत है तो। अच्छा, बाज़ औक़ात मुमकिन है ये भी होता हो कि जिस तरह स्टैंप्स नहीं होती हैं, कोई स्टैंप टाइप की चीज़ हो कि आपकी खाल के ऊपर स्टैंप लगाई जाती हो मसलन, और वो शक्ल बन जाती हो, अगर इस तरह की चीज़ है तो इसका भी मसला यही है कि अगर ये जो रंग अब आपकी खाल पर मौजूद है, अगर ये रुकावट है, एक मतलब है कि इस तरीके से दागा जाता है कि आपकी खाल उस रंग की हो गई है, जिस तरह बाज़ औक़ात आप कोई कील ठोक रहे हो और आपके हथौड़ी आपके हाथ पे लग जाए, खून जम जाता है अंदर, तो वो आपकी खाल रेड हो जाती है वहां से, सही ना। तो अगर ये खाल का कलर ही ग्रीन हो गया है, यानी खाल ग्रीन कलर की है, ना ये कि कोई ऊपर लेयर जमी हुई है, तब भी कोई मुश्किल नहीं है, तब भी कोई मुश्किल नहीं है, ना ये वुजू में रुकावट बनेगा ना ये गुस्ल में रुकावट बनेगा। लेकिन हाँ, अगर ये कोई स्टिकर टाइप की चीज है जो आपके ऊपर चिपका दी गई है और ये एक लेयर है जो आपकी स्किन के ऊपर, जिसको मतलब फर्ज करें थोड़ा गर्म होने की वजह से या किसी भी जो भी उनके केमिकल्स वगैरह होते हैं उसकी वजह से उन्होंने आपकी खाल के ऊपर इसको एक चिपका दिया स्टिकर की तरह, तो भले ये रुकावट बनेगा, फिर यहां पर सवाल पैदा होगा कि वुजू और गुसल के लिए क्या किया जाए। यानी इतने सारे हर्डल क्रॉस करने के बाद कहीं जाके ये मुश्किल खड़ी होगी, वरना तो रास्ता साफ है आपका, जिस तरह मेरे जहन में जो कॉन्सेप्ट है इसका टैटूज का, उसके हिसाब से रास्ता आपके लिए क्लियर है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है उसमें। लेकिन अगर ये आखिरी वाली सिचुएशन बने तो फिर मसला आएगा कि ये वुजू के लिए और गुसल के लिए रुकावट बनेगा और हर हाल में इसको हटाना ज़रूरी हो जाएगा, और अगर हटाना मुमकिन ना रहे तो फिर जो तौज़ीह में मसला दिया हुआ है कि अगर आज़ाए वुजू पर ये रुकावट मौजूद है तो आपको एहतियातन, अगर ये रुकावट ऐसी है कि जो आज़ाए वुजू और आज़ाए मतलब फ़र्क करें हाथ की पुश्त पर है, ये हाथ की पुश्त आज़ाए वुजू में भी शामिल है और आज़ाए तयम्मुम में भी शामिल है, तो यहाँ पर आपको एहतियातन दोनों करने पड़ेंगे, और अगर वो आज़ाए वुजू पर है सिर्फ और आज़ाए तयम्मुम में नहीं है तो सिर्फ तयम्मुम करना पड़ेगा और काफ़ी हो जाएगा नमाज के लिए। लेकिन बहरहाल अगर नमाज का वक्त दाखिल होने के बाद कोई ये लगवाए तो उसके लगवाने में भी मुश्किल हो सकती है और इश्काल हो सकता है। ये तो रुकावट की जहत से इसका मसला कि आया ये रुकावट बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा तो फिर हमारी जिम्मेदारी क्या बनेगी वुजू गुसल के हिसाब से, वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। दूसरी जहत या दूसरे एस्पेक्ट से अगर हम इसमें गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो इस एतबार से हो सकती है कि आया ये जीनत बनता है या नहीं बनता। मतलब फर्ज करें मैंने, अब खैर हमारे यहाँ अब इतनी बेहूदी हैं तो नहीं शुरू हुई, वरना गरबी दुनिया में आप चले जाएं तो ऐसे ही उनके कपड़े सुखड़े हुए होते हैं, फिर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे उन्होंने टैटूज बनवाए बनवाए हुए होते हैं, तो वहाँ ये मसला ज़्यादा खड़ा होता है कि ये जीनत का मसला आता है, वरना चेहरे पर तो नॉर्मली मैंने आज तक नहीं देखा किसी ने टैटूज बनवाए हुए हों, इल्ला ये कि ये मैच वैच में झंडे वंडे पेंट किए हुए हों तो एक अलग मसला है, वरना टैटूज मेरे जहन में नहीं है बहरहाल कि किसी ने चेहरे के ऊपर भी टैटूज बनवाए हों, तो वहाँ पर ये मसला आ सकता है। मतलब फ़र्ज़ करें बाजू पर है तो ये मसला आ सकता है कि अगर फ़र्ज़ करें आपने हाफ स्लीव की शर्ट पहनी हुई है तो ये मतलब जीनत अगर बन रहा है, तो आप अगर हाफ स्लीव की शर्ट पर तो वैसे ही आप नामहरम के सामने नहीं जा सकती हैं, वैसे ही नहीं जा सकती हैं, फिर ये हो भी और ना भी हो, इसके होने और ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ही हराम है। लेकिन बहरहाल कोई ऐसी जगह हो जो नॉर्मली हमारे यहाँ एक्सपोज होती हैं तो फिर एक सवाल आ सकता है कि जी ये जीनत के बाब में जाएगा या नहीं जाएगा, तो ये तो तय उर्फ करेगा आप सब उर्फ। अगर फर्ज करें किसी खातून को आप देखें उसने टैटू बनाया हुआ है तो ये जीनत शुमार होता है उर्फन या नहीं होता, अगर उर्फन जीनत शुमार होगा तो भले फिर हिजाब के मसाइल उसके ऊपर आएंगे। हालांकि फर्ज कर लें, थोड़ी देर के लिए मैं ऐसी मिसाल एक बनाते हैं जो मैंने कहा ना कि जो फर्जी एक मिसाल है क्योंकि मैंने नहीं देखी आज तक, आप लोगों ने शायद देखी हो, आपका मुशाहिदा मुझसे वसीह हो सकता है, लेकिन किसी ने चेहरे पर टैटू बनवाया हुआ है दुरुस्त, और फर्ज करें कि ये टैटू जो है वो जीनत शुमार हो रहा है, तो अब ये मसला आएगा कि इसके लिए, क्योंकि चेहरा जो फुकहा चेहरा और हाथ खोलने की इजाज़त देते हैं वो इस शर्त के साथ इजाज़त देते हैं कि आपके चेहरे और हाथ पर कोई ऐसी जीनत वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपके चेहरे और हाथ पर जीनत मौजूद है तो आपको आगे सिस्तानी, आगे खुमैनी, आगे खामनाई, दुरुस्त, ये तीनों मशहूर फुकहा हैं कि जो इजाज़त देते हैं चेहरा और हाथ खोलने की, फिर ये भी इजाज़त नहीं देते। फिर इनका भी फतवा है कि अपने चेहरे और हाथ को आपने नामहरम से छुपाना है, तो फिर वहाँ पर ये मसला आएगा कि इस औरत के लिए वाजिब हो जाएगा कि ये अगर नामहरमों के सामने जाए तो निकाब डालकर या इस तरीके से कवर करके जाए कि उसका वो टैटू वाला पोर्शन जो है वो कवर हो जाए और नामहरमों के सामने वो एक्सपोज्ड ना हो। ये जीनत की जहत से इसका मसला आएगा। बस दोनों एतबारात से मैंने मसला आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। बस फी हद नफ्स ही टैटू बनाना हराम, यानी इसके अंदर कोई हुरमत की वैसी जहत नहीं है। अगर हराम बनेगा तो इस वजह से कि जीनत बन रहा है और ना महरम देखेंगे, अगर हराम बनेगा तो इस एतबार से कि रुकावट बन रहा है और वुजू और गुसूल के अंदर आप एक रुकावट ईजाद कर रही हैं, तो वो उस एतबार से कुछ हुरमत की बातें आ सकती हैं। वह लफी नफ्स ही और ज़ाती तौर पर टैटू बनवाने में कोई हरज नहीं है।
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله